Hey, wake up. New drinks just dropped at Wendy's. Cold foam, cold brew coffee, and sparkling energy. Both the caramel and the chocolate cold foam are just, ugh, so good. And the pineapple citrus and cherry limeade sparkling energy each have
80 to 120 milligrams, whew,
of added caffeine. So whether you need a treat first thing or to just stop yawning already, mornings hit different. To pick up a new pick-me-up, gotta be Wendy's. At participating U.S. Wendy's.
नमस्कार। 3 साल पहले आपको याद होगा JNU में कुछ लोगों ने नारे लगाए थे पाकिस्तान जिंदाबाद के, और एक ऐसा नारा लगाया था जो मैं अपनी ज़ुबान पर नहीं ला सकता, जिसमें टुकड़े टुकड़े शब्द का इस्तेमाल हुआ था, और बहुत सारे देशभक्त अचानक खड़े हो गए थे। जिन लोगों ने नारे लगाए उनका आज तक पता नहीं चला, लेकिन गिरफ्तार कर लिया गया कन्हैया कुमार को, जो JNU के प्रेसिडेंट थे, और उन पर देशद्रोह का मुकदमा लगा दिया गया, सिडिशन का। अब सवाल ये उठता है कि देशद्रोह क्या है, राष्ट्रद्रोह क्या है, और सरकार के खिलाफ या सरकार की आलोचना में अगर आप उसका विरोध करते हैं, सरकार का नारे लगाना जो आपका एक डेमोक्रेटिक राइट है, जो आपका एक लोकतांत्रिक अधिकार है, जमहूरियत का हक है आपको, क्या वो राष्ट्रद्रोह है? ऐसे में 3 साल बीत गए। कायदे से होता है कि 90 दिन के भीतर भीतर चार्जशीट फाइल कर दी जाती है, लेकिन अब चुनाव को मद्देनज़र रखते हुए 3 साल बाद अब चार्जशीट फाइल की जा रही है, जबकि सुप्रीम कोर्ट भी इस पर कह चुका है कि इरेलीवेंट है, ये पहले कह चुका है वो, कि मतलब अप्रासंगिक है, मानी नहीं रखता। JNU सेडिशन केस में कल एक मोड़ तब आया जब ABVP के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जो भारतीय जनता पार्टी का विद्यार्थी परिषद मतलब स्टूडेंट विंग है, उसके 2 लोगों ने कहा कि वो नारे जो थे वो ABVP वालों ने ही लगाए थे। ये 2 लोग थे उस वक्त जो वाइस प्रेसिडेंट एक रहे हैं, JNU ABVP यूनिट वाइस प्रेसिडेंट जतिन गोरैया, और एक जॉइंट सेक्रेटरी रहे वहाँ की यूनियन के प्रदीप नारवाल ने। उन्होंने कहा कि मतलब जो दिखाया गया था बार बार न्यूज़ चैनल्स पर वीडियो की, मतलब टुकड़े टुकड़े और इस तरह के नारे लगाते हुए लोग, वो हमारे ही लोग थे और हम उनको पहचान सकते हैं। इन दोनों ने ABVP से इस्तीफा दे दिया था सन 2016 में ही, और ये कहना है प्रदीप नरवाल का कि मुझे याद है उस वक्त जतिन और मैं, क्योंकि हम दोनों दलित हैं, हमें बार बार कहा गया कि आप टेलीविज़न पर इंटरव्यूज दीजिए और ABVP को डिफेंड कीजिए, उसके फेवर में बात करिए, उसकी पैरवी कीजिए रोहित वेमुला की आत्महत्या के बाद। रोहित वेमुला एक दलित छात्र था, जैसे कि हम सब जानते हैं, उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी जब उसको टारगेट किया था। ABVP की तरफ से बंडारू दत्तात्रेय ने HRD मिनिस्टर को भी लिखा था, ABVP ने लिखा था बंडारू दत्तात्रेय को, बंडारू दत्तात्रेय ने स्मृति ईरानी HRD मिनिस्टर थी उनको लिखा था, और फिर रोहित वेमुला को हॉस्टल खाली करना पड़ा था, और उसकी तैयारी के दिन थे, PhD वो कर रहा था, और उसने फिर आत्महत्या कर ली। उसको आतंकवादी तक कहा गया था। इनका कहना है, इन दोनों का, कि इन पर प्रेशर था कि ये इंटरव्यूज दें टेलीविज़न चैनल्स पर, लेकिन इन्होंने नहीं दिया और इस्तीफ़ा दे दिया ABVP से। लेकिन JNU जो स्टूडेंट जॉइंट सेक्रेटरी सौरभ शर्मा ने ये कहा है कि इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली है, और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कांग्रेस ने ऑर्गेनाइज की थी। नरवाल ने तो कांग्रेस ज्वाइन की है जो जॉइंट सेक्रेटरी था, लेकिन गोरैया ने नहीं करी है। अब जैसा मैं कह रहा हूँ कि राष्ट्रद्रोह, देशद्रोह, सिडिशन, अगर मैं सरकार के खिलाफ हूँ और सरकार के विरोध में नारे लगाता हूँ तो मैं देश के खिलाफ नहीं हूँ। सरकारें आती हैं जाती हैं, देश कायम रहता है, सभ्यता कायम रहती है, गवर्नमेंट्स कम एंड गो, द स्टेट नेवर डाइज। स्टेट माने जो पूरा तंत्र है राजसत्ता का, जो राजसत्ता का पूरा तंत्र है वो तो वहीं का वहीं रहेगा। उसके बाद एक डीप स्टेट होती है जिसके बारे में फिर कभी हम बात करेंगे। तो जो राजसत्ता है वो अलग है, सरकार अलग है। ये मेरा डेमोक्रेटिक राइट है, अधिकार है, हक है कि मैं सरकार की किसी बात से खुश नहीं हूँ, उसी की किसी नीति से खुश नहीं हूँ, तो मैं जुलूस निकालूँ, नारे लगाऊँ, प्रदर्शन करूँ, ये मेरा लोकतांत्रिक हक है। इसको सेडिशन नहीं कहा जा सकता, और ख़ासकर तब जब ये नारे उन लोगों ने, उन बच्चों ने लगाए ही नहीं, कन्हैया कुमार और दूसरे लोगों ने, और FSL की जानकारी से भी बात सामने आ चुकी है, पूरा एक उसका फॉरेंसिक टेस्ट हुआ था उस वीडियो का, लेकिन हमारे यहाँ कुछ चैनल है जो उसे चलाते रहे हैं। इस पर सोली सोराब जी हमारे अटॉर्नी जनरल रहे, आज इंडियन एक्सप्रेस में उन्होंने जो लिखा है उसमें उन्होंने कहा है कि गांधी जी ने बहुत ही सही तरीके से इंडियन पेनल कोड में सेडिशन यानी राष्ट्रद्रोह या देशद्रोह कहिए, सेडिशन तो एकदम जैसे शहजादे की तरह हमारे IPC का इंडियन पेनल कोड का, लेकिन अफसोस कि अब ये राजा बन चुका है। यानी जब तक हम गुलाम थे अंग्रेज़ इस कानून का सरेआम इस्तेमाल करता था जिस ताकि लोगों को जेल में डाला जा सके, चाहे वो लोकमान्य तिलक हो, चाहे वो महात्मा गांधी हो, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू हो। अच्छा, उसके अलावा सन 1962 में सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट दी, एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय दिया, केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इसके मुताबिक कि सरकार का क्रिटिसिज्म करना, सरकार की आलोचना करना या जो प्रशासन है उसकी आलोचना करना, चाहे जितनी भी मतलब बुरे तरीके से ना की गई हो, ये सेडिशन नहीं है, ये राष्ट्रद्रोह नहीं होता, देशद्रोह नहीं होता, ये शासन के खिलाफ उसकी आलोचना है, उसके विरोध में प्रदर्शन है, तो इसको ये नहीं कहा जा सकता। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 124A जो सेडिशन से जुड़ा हुआ है उसके इस्तेमाल पर भी पाबंदी काफ़ी सारी लगा दी थी। जस्टिस मार्कंडेय काटजू, उनका कहना है कि जो JNU के विद्यार्थियों के खिलाफ चार्जशीट अब दायर की जा रही है इसकी देशद्रोह की, ये गैर कानूनी है। दिल्ली पुलिस ने कन्हैया कुमार, उमर खालिद और औरों के खिलाफ शाउटिंग, चिल्लाना और भीड़ को भड़काना और भारत के खिलाफ नारे लगाने का आरोप लगाया है 2016 का, लेकिन ये क्राइम नहीं है मेरे ख्याल में। ये जस्टिस मार्कंडेय काटजू कह रहे हैं, मेरे ख्याल में ये फ्रीडम ऑफ स्पीच आर्टिकल 19(1) का हिस्सा है और कॉन्स्टिट्यूशन में हमें अधिकार है कि हमारे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है और दूसरे हमें प्रदर्शन करने का अधिकार है जैसे मैंने पहले कहा, और सरकार की आलोचना करने का अधिकार है जैसे मैंने पहले कहा, सरकार की आलोचना देशद्रोह नहीं हो सकती। श्योरली शाउटिंग और इंसाइटिंग टू शाउट एंटी इंडिया स्लोगन्स विल नॉट रिजल्ट इन इमिनेंट और इमीडिएट लॉलेस एक्शन, हेंस द चार्जशीट डिजर्व्स टू बी रिजेक्टेड क्वाश्ड। इसमें यह होता है कि अगर नारे ऐसे हों जिसमें पब्लिक को, जनता को हिंसा के लिए भड़काया जाए और माहौल ख़राब होता हो, जहाँ पर एक यूनिवर्सिटी के कैंपस में अगर लोग नारे लगा रहे हैं, छात्र नारे लगा रहे हैं सरकार के खिलाफ, जिसमें कुछ लोग घुस आए, अब वो ABP वाले हैं या किसी और एजेंसी के हैं हमें नहीं मालूम, वो 6 लोग अभी तक नहीं मिले जो नारे दिखाते देखे गए थे, मुंह जिनने ढक रखे हैं वगैरह वगैरह। बहरहाल इतना तय है कि चुनाव के मौसम में देशद्रोह, राजद्रोह और सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाना, इन तीनों का फ़र्क समझा जाए, सरकार के खिलाफ, सरकार की नीतियों के खिलाफ उसका विरोध करना देशद्रोह नहीं है। लेकिन जिस सरकार को डर हो कि जूते भी, जिन नेताओं को जो सरकार चला रहे हैं कि प्रधान सेवक की रैली में जूते भी काले ना पहने जाएं, मोजे भी काले ना पहने जाएं, पैंट भी काली नहीं पहनी जाएगी, कमीज़ भी नहीं पहनी जाएगी, टोपी भी काली नहीं, काला रुमाल भी नहीं, काली बनियान भी नहीं, अंडरवेयर का हम जानते नहीं, बहरहाल जिस सरकार में प्रदर्शन तक की इजाज़त ना हो, काला झंडा दिखाने की इजाज़त ना हो, उसको शायद समझ नहीं है कि राजद्रोह क्या होता है और देशद्रोह क्या होता है और सरकार के खिलाफ बोलना क्या होता है, तीनों में फर्क है। आज एक अच्छी खबर सामने आई, अच्छी खबर इसलिए है क्योंकि सख्ती से कड़े कदम उठाए जाएं, सिर्फ कड़ी निंदा ना की जाए, आप मेरा आशय समझ रहे होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ, सख्ती से कड़े कदम अगर उठाए जाएं तो लोग लाइन पर आते हैं। आज NGT नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने 100 करोड़ रुपए का फाइन जो उसने लगाया था पिछले साल Volkswagen जिसे बोलते हैं, Volkswagen भी बोलते हैं लोग, उस कंपनी पर पूरे पर्यावरण को दूषित करने के लिए धोखा देकर डीजल की गाड़ियों को लेकर एक गलत सूचना देने के लिए, चीट डिवाइस जिसे बोलते हैं उसका इस्तेमाल करते हुए जो धोखा दिया उससे दिल्ली की जनता में या भारत की जनता में सड़कों पर जो नुकसान हुआ माहौल का, पर्यावरण का, 100 करोड़ रुपए का फाइन लगाया था, जुर्माना लगाया था पिछले साल। लेकिन इन लोगों ने, फोक्सवैगन लोगों ने ये जमा नहीं किया। तो आज 24 घंटे के अंदर अंदर 100 करोड़ रुपए जमा करने का आदेश दिया है एनजीटी ने, वरना जो टॉप के ऑफिशियल्स हैं, जो चीफ हैं फोक्सवैगन वगैरह के, जैसे वॉक्सवैगन भी कहते हैं लोग, हाँ, उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं, उनकी जायदाद वगैरह जो है, उसको कुर्क कर दिया जाएगा। ये एनजीटी के चेयरपर्सन हैं आदर्श कुमार गोयल हैं, उन्होंने बहुत नाराज़गी जताई कि बावजूद हमारे ये हुक्म पास करने के, ऑर्डर पास करने के, आपने जमा नहीं करवाए। व्हाई हैव यू नॉट कम्प्लाइड विद आवर ऑर्डर व्हेन देयर इज़ नो स्टे? आप लोगों ने स्टे भी नहीं लिया था हमने जो हुक्म दिया था। वी विल नॉट गिव यू एनी फर्दर टाइम, हम आपको और समय नहीं देंगे। और उसके बाद जो बेंच थी जिसमें जस्टिस एसपी वांगड़ी भी थे, उन्होंने फोक्सवैगन को एक एफिडेविट भी देने को कहा कि वो कल माने शनिवार जो है 18 जनवरी तक शाम 5 बजे तक 100 करोड़ रुपया जमा कराएंगे। देखते हैं ये लोग जमा कराते हैं या नहीं कराते। इसमें सीधा साधा ये है कि जो कारण है इस अल्टीमेटम के पीछे वो ये है, 4 लोगों की कमेटी अपॉइंट हुई थी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने करी थी, और उन्होंने कहा था कि 171 करोड़ और 34 लाख रुपए का फाइन कंपनी पर होना चाहिए, क्योंकि दिल्ली में, ये सिर्फ दिल्ली को लेकर है, उन्होंने एयर पोल्यूशन बहुत फैलाई है, पर्यावरण बहुत दूषित किया है। और उनके कमेटी के मुताबिक फोक्सवैगन ने अप्रॉक्सीमेटली 49 टन नाइट्रोजन ऑक्साइड देश की राजधानी में फैलाई है, और ये भी झूठ बोलकर, चीट डिवाइस लगाकर कि हमारी डीजल की गाड़ियों का एमिशन जो है अंतर्राष्ट्रीय है। तो ऐसे में पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचा है। पर्यावरण को लेकर हम लोग, एनवायरनमेंट को लेकर हम लोग बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं हैं। हम मानते हैं कि ये सिर्फ सेमिनार का विषय है या सिर्फ एनजीओज ही इसको डील कर सकते हैं। अब ये हमारे सीधा हमारी ज़िंदगी पर असर कर रहा है। हमारी हवा दूषित है, हमारा पानी दूषित है, हमारे सड़कों पर कचरा बिखरा रहता है, स्वच्छ भारत न जाने कहाँ चला गया, सिर्फ फोटो ऑप करने से और फिल्मी एक्टरों और सितारों के साथ या क्रिकेटर्स के साथ सड़क पर झाड़ू लगा देने से भारत स्वच्छ नहीं हो जाता। स्वच्छ भारत की हकीकत भी हम आपके सामने लाएंगे। इस वक्त पूरी दुनिया में जहाँ तक एनवायरनमेंट की बात है, हम बहुत नीचे हैं, बहुत नीचे, बहुत नीचे हैं। हमारा माहौल बहुत ख़राब है, दूषित है, और जो फेफड़े हैं उनकी बीमारियां फैल रही हैं, बच्चों में भी फैल रही हैं। और हम अक्सर सुनते हैं कि कैंसर बहुत नज़दीक आ गया हमारे, फलाने को कैंसर हो गया, अलाने को कैंसर हो गया, इतना कैंसर हमने कभी नहीं सुना था पहले। सबसे बड़ी वजह कैंसर की पर्यावरण भी है। हमारे प्रधान सेवक गए थे अभी उड़ीसा एक इलेक्शन रैली के लिए, उनके लिए मतलब करीब 2000 पेड़ काट दिए गए थे उनके हेलीकॉप्टर को उतारने के लिए। तो जब तक हम पर्यावरण को लेकर संवेदनशील नहीं होंगे, इसे सिर्फ एनजीओ का मामला मानेंगे, सिर्फ सेमिनार की डिस्कशन का मामला मानेंगे, हमारी हालत बद से बदतर होती जाएगी। वक्त रहते हम चेत जाएं बेहतर है। नमस्कार।
अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमें लाइक कर सकते हैं और ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, और यूट्यूब पर हमारे वीडियोस देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं।